آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔ आज के मुख्य समाचार में मनोरंजन के दिग्गज बर्च न्यूटन को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने मैल्कम टर्नबुल की आलोचना को किया खारिज, स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरने को वैध बनाने के लिए न्यू साउथ वेल्स के सांसद में बहस, और खेल में T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराकर विश्व कप के फाइनल में किया प्रवेश। मेलबर्न के दिग्गज बर्च न्यूटन का राजकीय सम्मान के साथ मेलबर्न में अंतिम संस्कार किया गया, जहां उनके परिवार और दोस्तों ने उनको अंतिम विदाई दी। मई 2021 में एक पैर के विच्छेदन से जटिलताओं की वजह से लोगी पुरस्कार विजेता की हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मेलबर्न के सेंट पैट्रिक कैथीड्रल में की गई सेवा को टेलीविजन पर प्रसारित किया गया। कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण शोक मनाने वालों की संख्या 500 तक सीमित थी। विक्टोरियन प्रीमियर डेनियल एंड्रूस का कहना है कि बर्ट न्यूटन अपने 6 दशकों से अधिक के करियर में एक अविश्वसनीय विरासत को पीछे छोड़ गए हैं।
He entertained his audience because he respected his audience. He never forgot where he came from, and he lived his values. Compassion and kindness, generosity and empathy. Always working to lift those around him to new heights. We are all richer for his life and poorer for his passing.
बर्ट न्यूटन ने 12 साल की उम्र से अपने रेडियो करियर की शुरुआत की थी और समय के साथ ऑस्ट्रेलियाई टेलीविजन मंच और स्क्रीन पर भी उन्होंने एक सफल करियर बनाया। श्री मैल्कम टर्नबुल और फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रोन ने के हमलों के बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने जोर देकर कहा कि उन्होंने सार्वजनिक जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। ऑस्ट्रेलिया ने ऑकस असंघी में नए परमाणु संचालित जहाजों के पक्ष में 90 बिलियन की पनडुब्बी अनुबंध को रद्द करने का निर्णय लिया था, जिसके चलते श्री मैक्रोन ने G20 शिखर सम्मेलन में श्री मॉरिसन को झूठा करार किया था। श्री टर्नबुल ने भी श्री मॉरिसन को बेईमान करार दिया है। उनका कहना है कि जब वे एक साथ सरकार में थे, तब श्री मॉरिसन ने कई मौकों पर उनसे झूठ बोला था। लेकिन श्री मॉरिसन ने रेडियो 3AW को बताया कि वह अपने पूर्व सहयोगी की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं ले रहे हैं।
I've learned in public life over a long period of time to not have a thin skin and to not get bitter. To just stay focused on the job, you'll get slings and arrows from everywhere. You'll get them in politics, you'll get them from the media, you'll get them from time to time. And if you haven't got the thick skin to deal with that, then you're in the wrong job.
क्वींसलैंड ने स्थानीय रूप से अधिग्रहित 2 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। संक्रमित लोगों में एक युवा लड़की और एक महिला हैं, जो राज्य के दक्षिण में गुंडी विंडी क्लस्टर में संक्रमण से जुड़े हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए संक्रमणों को कम जोखिम वाला माना जा रहा है, क्योंकि कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण करते वक्त दोनों महिलाएं अलगाव में थीं। लेकिन कार्यवाहक मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी पीटर एटकिन ने इस सप्ताह गोल्ड कोस्ट के सामने आए 2 रहस्यमय मामलों पर अपनी चिंता व्यक्त की है।
We're still uncertain at the moment as to how they've acquired COVID. We also know their genomics are identical. We're working through Gold Coast Public Health Unit and they're doing some amazing work at the moment, looking at all the movements for those 2 people, seeing if there's a common link, see if they've come in contact together. Or see if there's that one other link that may be evident that has brought those 2 people together somehow or shared COVID between them.
ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 से 11 और लोगों की मौत हुई है, जिनमें विक्टोरिया के 9 और न्यू साउथ वेल्स के 2 मामले शामिल हैं। विक्टोरिया ने 1,115 नए स्थानीय मामले, न्यू साउथ वेल्स ने 286 और ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ने 15 नए कोरोना मामले दर्ज किए हैं। न्यू साउथ वेल्स की संसद के सदस्य एक बिल पर बहस कर रहे हैं जो राज्य में गंभीर रूप से बीमार लोगों को स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मृत्यु पर तक पहुंच प्रदान करेगा। न्यू साउथ वेल्स एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें अभी तक स्वैच्छिक सहायता प्राप्त मरने वाले कानूनों को पारित नहीं किया गया है। बिल को सिडनी के स्वतंत्र सांसद एलेक्स ग्रीनविच द्वारा पेश किया गया था। उनके समर्थन में राजनीतिक स्पेक्ट्रम से रिकॉर्ड 28 सह प्रायोजक हैं, जिनमें लेबर सांसद जो हेलेन भी शामिल हैं।
I strongly believe that each of us should be afforded in dying the same dignity, respect and compassion with which we live. This bill treads a challenging path deftly, with a level of consideration and care our community would expect on an issue that is this important. Its principles are sound, offering choice to those dying whilst protecting the rights and beliefs of those who might oppose it.
परिवार, समुदाय और विकलांगता सेवाओं के मंत्री श्री एलिस्टर हेंसकेंस का कहना है कि उन्हें बिल के बारे में चिंता है।
Any legislation that results in the lawful ending of a person's life must be well drafted and carefully scrutinized because any weaknesses in the legislation can result in new and unintended consequences. An immediate cause for concern is that the second consulting doctor is appointed by the first consulting doctor. Every pretense to an independent review is destroyed by the manner of the second doctor's appointment under this legislation.
इस वित्तीय वर्ष में न्यूजीलैंड के नागरिकों के लिए ऑस्ट्रेलिया में स्थायी निवास को आसान बनाने के उपायों को और बढ़ावा दिया जाएगा। जिन लोगों को महामारी के कारण बेरोजगारी का सामना करना पड़ा है, उनके लिए स्थायी निवास के लिए आवश्यक $53,000 की आय सीमा पर छूट दी जाएगी। स्थायी निवास के लिए पात्र होने के लिए आवेदक का निरंतर समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहना जरूरी है, लेकिन महामारी के कारण विदेश में बिताया गया समय भी इस आवश्यकता के लिए गिना जाएगा। इमिग्रेशन मिनिस्टर एलेक्स हॉक का कहना है कि इन उपायों की वजह से न्यूजीलैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया के संबंध और मजबूत हो जाएंगे। नए आंकड़ों के अनुसार सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध समुदायों के ऑस्ट्रेलियाई लोग तेजी से घोटालों के शिकार हो रहे हैं। इन समुदाय में वित्तीय नुकसान की मात्रा में तेज वृद्धि देखी गई है। ACCC के डाटा से पता चलता है कि स्कैमर्स ने इस अवधि के दौरान दूसरी भाषा के रूप में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से $36.2 मिलियन की चोरी की है। यह संख्या पिछले साल की तुलना में लगभग 92% अधिक है। असिस्टेंट ट्रेजरर माइकल सुरकर का कहना है कि सरकार ने पहले ही रिड्यूसिंग स्कैम कॉल्स कोड बनाया है, जिसमें स्कैम कॉल्स को ब्लॉक किया जा सकता है। इस कोड के तहत टेलीकॉम को स्कैम कॉल्स का पता लगाने, ट्रेस करने और ब्लॉक करने की आवश्यकता होती है। लेबर की वित्तीय सेवाओं के प्रवक्ता स्टीवन जोन्स का कहना है कि इस पर और अधिक काम करने की जरूरत है।
The government needs to step up and do more. Labor is proposing a new strategy to take on the scammers, a tough new cop on the beat, a one-stop shop in government, a new scam-busting centre where we bring together the regulators, the police force, industry representatives to act fast.
स्वास्थ्य मंत्रालय के एक आंकड़ों के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 13,091 नए कोरोना मामले सामने आए हैं और 340 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिससे सक्रिय मामलों की संख्या तकरीबन 1,38,556 दर्ज की गई है। विदेश में से आने वालों के लिए नए गाइडलाइंस के तहत आज से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भारत में COVID-19 के आगमन से पहले और बाद में परीक्षण देने से छूट दी जाएगी। दिशा निर्देशों के अनुसार यदि आगमन पर या होम क्वारंटाइन अवधि के दौरान कोविड-19 के लिए लक्षण पाए जाते हैं तो उन्हें परीक्षण से गुजरना होगा और निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय आगमन के लिए संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार पूरी तरह से टीकाकरण करने वाले यात्री जो ऐसे देश से आ रहे हैं जिनके साथ भारत ने विश्व संगठन WHO द्वारा अनुमोदित कोविड-19 टीकों की दो तरफा व्यवस्था की है, उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें सोमवार से घरेलू संगरोध और परीक्षण से गुजरने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें आगमन के 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। अब सुनते हैं मुद्रा दर की जानकारी। आज के दिन अमेरिका में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 73 सेंट्स है और भारत में एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की कीमत 54.19 रुपये है। अब खेल के समाचार। T20 वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट से जीत हासिल की और विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया। कल के मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की और 4 विकेट पर 176 रन बनाए। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 177 रन बनाए। अब टीम पर रविवार 14 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार अगले साल एकल सेमीफाइनल का मंचन रात में किया जाएगा। दोनों महिलाओं के सेमीफाइनल 27 जनवरी को मेलबर्न पार्क में प्राइम टाइम इवनिंग सेशन में होंगे और मेन्स सेमीफाइनल अगले दिन खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के प्रमुख क्रेग टिली का कहना है कि टेनिस ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीटों को मेलबर्न में लाइमलाइट साझा करने का मौका मिले। अब सुनते हैं कल यानी कि शनिवार के मौसम का हाल। पर्थ में धूप खिली रहेगी, यहाँ का न्यूनतम तापमान 14 और अधिकतम 31 डिग्री। एडलेड में 1-2 बौछार होने की संभावना, न्यूनतम तापमान 10, अधिकतम तापमान 17। मेलबर्न में बारिश होने की आशंका, न्यूनतम 10 और अधिकतम 15 डिग्री। कैनबरा में भी मेलबर्न की तरह बारिश पड़ने के आसार, न्यूनतम 7 और अधिकतम 13 डिग्री। सिडनी में आंशिक बादल रहेंगे, न्यूनतम 15 और अधिकतम 23 डिग्री। ब्रिस्बेन में धूप रहेगी लेकिन तेज हवाओं वाला दिन भी रहेगा, न्यूनतम 17 और अधिकतम 27 डिग्री। डार्विन में बारिश के साथ तूफान की संभावना, न्यूनतम 26 और अधिकतम 34 डिग्री। उधर भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप रहेगी और अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री। कल के मौसम के पूर्वानुमान के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।